SBS हिंदी सेवा के सभी सुनने वालों को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। अभी तक भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के कुल 431 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 115 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या देश छोड़कर चले गए हैं। ओमिक्रॉन के सबसे अधिक 108 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। इसके अलावा दिल्ली में 79, गुजरात में 43, तेलंगाना में 38, केरल में 37, तमिलनाडु में 34 और कर्नाटक में 31 मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो ब्रॉडकास्ट मन की बात में कोरोना वायरस के नए स्वरूप के खिलाफ लड़ाई में व्यक्तिगत सतर्कता और अनुशासन पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कुछ नए फैसलों के बारे में भी जानकारी दी।
साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही। स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा।
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए न केवल सभी दावों को गलत ठहराया बल्कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लापरवाही बरतने और जिम्मेवारी से बार बार पीठ दिखाने का आरोप भी लगाया।
कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आहट से ठीक पहले एक बार फिर मोदी सरकार देशवासियों की जान जोखिम में डालने चली है। प्रधानमंत्री जी की कल की शेखी बघारने वाली घोषणा के बाद सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ओमिक्रॉन वायरस के जानलेवा खतरे को नजरअंदाज कर देशवासियों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है मोदी सरकार। बातें बनाने और टेलीविजन पर आने से आपराधिक लापरवाही के जख्म नहीं भर पाएंगे।
विपक्ष कोरोना के प्रति सरकार की बढ़ती चिंता देख भाजपा के ऊपर चुनाव टालने की कोशिश का आरोप लगा रहा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि सामने खड़ी हार के डर से योगी सरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव टालना चाहती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत चुनाव टालने के लिए राज्यपाल को लिखे जाने से विपक्षी दलों की बात को बल मिलता है। वे इसकी तुलना पश्चिमी बंगाल चुनाव से भी कर रहे हैं, जहाँ कोरोना के चरम पर होने के बावजूद चुनाव न तो टाले गए और न ही उन्हें कम चरणों में संपन्न किया गया। निर्वाचन आयोग इस विषय में जल्द ही निर्णय लेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार अपने एक दिन पहले दिए गए बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि केंद्र कृषि कानूनों को संशोधित रूप में फिर से पेश नहीं करेगा। श्री तोमर ने शुक्रवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों की वापसी का इशारा करते हुए कहा था,
निजी निवेश का आज भी अभाव है। हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान या हिंदुस्तान की बैकबोन है।
उनके इस वक्तव्य को सुन कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केंद्र 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद संशोधन के साथ तीनों निरस्त किए गए कृषि कानूनों को वापस लाने की योजना बना रहा है। श्री तोमर ने तुरंत स्पष्टीकरण देते हुए कहा,
मैंने यह कहा कि भारत सरकार ने अच्छे कानून बनाए थे, अपरिहार्य कारणों से हम लोगों ने उनको वापस लिया है, लेकिन भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए काम करती रही।
नागालैंड में विवादित सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून AFSPA को हटाने की मांग पर विचार करने के लिए एक पैनल गठित किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के 3 दिन बाद रविवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी। ज्ञात रहे कि नागालैंड के मोन जिले में सेना के एक ऑपरेशन में हुए चूक के बाद राज्य से अफ्सपा हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मोन जिले में भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस के एक ऑपरेशन के दौरान 8 बेकसूर ग्रामीणों की मौत हो गई थी। सेना पर निहत्ते ग्रामीणों पर अंधाधुंध गोलीबारी करने का आरोप है। इस हमले के बाद ग्रामीणों के हिंसक विरोध के दौरान भी 6 प्रदर्शनकारी मारे गए थे और 1 जवान की मौत हुई थी। नागालैंड विधानसभा ने पिछले हफ्ते एक मत से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अफ्सपा हटाने की मांग की थी। गौरतलब है कि अफ्सपा के तहत सुरक्षा बलों को कई तरह के विशेषाधिकार दिए गए हैं। भारत भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया, लेकिन कोविड नियमों के चलते गिरजाघरों में लोगों की भीड़ अपेक्षाकृत कम रही। हिंदू कट्टरवादी संस्थाओं द्वारा कई जगह अशांति फैलाने की घटनाओं के कारण भी इस पवित्र त्यौहार को मनाने में लोगों को व्यवधान का सामना करना पड़ा। भाजपा शासित मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद ऐसी 2 घटनाएं हरियाणा के अंबाला और पटौदी में भी देखने को मिली। अंबाला में दंगाइयों ने 173 साल पुराने होली रिडीमर चर्च को खंडित करने का कुत्सित प्रयास किया, जबकि पटौदी में एक ईसाई स्कूल की प्रार्थना सभा में व्यवधान डाला गया। इन घटनाओं की चहुंओर निंदा के बाद राज्य गृह मंत्री अनिल विज ने मामले का संज्ञान ले दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पिछले दिनों आयोजित हिंदू धर्म संसद में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले बेहद नफरती और खतरनाक भाषणों के सिलसिले में पुलिस ने अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त निंदा के बाद, जिसमें भूतपूर्व टेनिस चैंपियन मार्टिना नावरतीलोवा शामिल हैं, तृणमूल कांग्रेस नेता और RTI कार्यकर्ता साकेत गोखले की शिकायत पर पुलिस ने एक FIR दर्ज की है, जिसमें 3 लोगों वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, धर्मदास और एक अन्नपूर्णा नामक महिला को नामजद किया गया है। इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के आधार पर विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार या उत्तराखंड सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादी हमेशा घृणा और हिंसा फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, पर अब इसे और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोने पर फिल्माए गए गाने मधुबन में राधिका नाचे पर विवाद शुरू हो गया है। इस मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नाराजगी जताते हुए अभिनेत्री सनी लियोनी और संगीतकार शारिब तोशी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी।
कुछ विधर्मी हैं जो हिंदू आस्थाओं को लगातार चोट पहुंचा रहे हैं। इस साकिब तोशी जो है ना, एक आध गीत अपने धर्म पे बना सकते हैं ऐसा। हमारे धर्म की आस्था हमारी आस्थाओं पर चोट जरूर पहुंचाती है। मैं सनी लियोनी जी से साकिब तोशी हिदायत दे रहा हूँ कि समझे और संभले, विधि विशेषज्ञों से राय लूंगा। 3 दिन में अगर इनने माफी मांगी या हटाया नहीं उसे, तो हम कानूनी कार्रवाई इन पर कर देंगे।
और आइए अब सुनते हैं खेल समाचार। साउथ अफ्रीका के साथ फ्रीडम ट्रॉफी के लिए सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। स्टंप्स के समय भारत ने 3 विकेट खोकर 272 रन बना लिए थे। KL राहुल और मयंक अग्रवाल की सलामी जोड़ी ने धैर्य का परिचय देते हुए शतकीय साझेदारी की। मयंक 60 रन बनाकर ल्यूइंगिंगीदी की गेंद पर आउट हुए। अगली ही गेंद पर इंगीदी ने चेतेश्वर पुजारा को शून्य पर आउट कर दिया। विराट कोहली ने स्टार्ट तो अच्छा लिया पर एक बार फिर बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकामयाब रहे और 35 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इंगीदी का तीसरा शिकार बने। राहुल धैर्य और प्रतिभा का शानदार परिचय देते हुए 122 रन बना अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं, जबकि अजिंक्य रहाणे 40 रन पर खेल रहे हैं। इसके साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। SBS हिंदी सेवा की ओर से आप सबको मनन कुमार का पुनः नमस्कार।